इसलिए हम गीता में पढ़ते हैं यह जीव जहां पर उसके अनुरूप प्रारब्ध को फलित होने के अनुरूप माता पिता और वातावरण प्राप्त होंगे वहां वह चला जाता है। यह कर्म का जो आकर्षण है, कर्म का जो सिद्धांत है, उसे सतत खींच रहा है, वह इधर उधर नहीं जा सकता है। तो यही कहा गया कि यहां पर आकस्मिकता नहीं है, इतने बड़े हैं वो। मैंने उसका अर्थ यह है कि जो कह रहे हैं जूलियन हक्सले, रज और शुक्र पीढ़ियों के भाग्य का नयन करते हैं, रजकण अनंत संभावनाओं में से आकस्मिक रूप से किसी एक समन्वय के सम्मुखीन हो, समवाय के सम्मुखीन होता है और वह लक्ष्य लक्ष्य शुक्र युग्मों से घिर जाता है। इनमें से हर शुक्र युग्म दूसरे से सर्वथा भिन्न होता है। तब नाटक का अंतिम क्षण उपस्थित होता है जब रजकण और शुक्रकण एक विशाल व्यक्तित्व के प्रारंभ को उत्पन्न करने के लिए परस्पर विवाहित हो मिलित होते हैं। यहां भी यह पूर्णतः संयोग ही की बात है कि संभावित लक्ष्य लक्ष्य जोड़ों में से कौन सा जोड़ा विवाह की सार्थकता को प्राप्त करेगा। एक जोड़ा संभवतः एक प्रातिबुद्धि को जन्म दे सकेगा और दूसरा एक मंद बुद्धि को आदि आदि, यह उसका अर्थ। तो इससे तो कोई कि इतने बड़े जूने हंसले अब प्रातिबुद्धि और मंद बुद्धि ये सब चांस प्रोडक्ट हैं, आकस्मिक रूप से ये पैदा हो जाते हैं। यह कोई वैज्ञानिक बात तो नहीं मालूम पड़ती कि आकस्मिक रूप से पैदा हो गए। संसार में कोई बात आकस्मिक होती है कि चांद पर कोई आदमी चला गया क्या आकस्मिक रूप से गया, कि चंद्रमा के धरातल पर मनुष्य पहुंच गया तो कोई कहे कि वह आकस्मिक रूप से पहुंच गया। उसके पीछे कितने वर्षों की साधना है वैज्ञानिकों की, सतत वे प्रयास कर रहे हैं अंतरिक्ष के नियमों को जानने के लिए, चंद्रमा के नियमों को जानने के लिए, और एक बार नियमों को जान करके यह जानने के लिए कि नियमों को पार हम कैसे कर सकते, कितनी साधना है। वहां पर चांस तो नहीं, उसके पीछे सतत यह साधना चली हुई है। तो यह चीज किसी प्रकार की यहां पर जो मानते हैं कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, क्या पैदा करेगा ना बच्चा माता पिता को खोज लेता है, कौन सा तथ्य ठीक है? तो तथ्य यही ठीक होता है कि बच्चा अपने संस्कारों के अनुरूप माता पिता और वातावरण का चुनाव करता है। माता पिता चुनाव नहीं करते बच्चे का, बच्चा चुनाव करता है अपने माता पिता का, उसके कर्मों के संस्कार उसे बाधित करते हैं वहां जाने के लिए। या मानो यह पंचाग्नि क्रम की विद्या है, इसी क्रम से मानो आता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ठीक है जीव जिस समय गया चला गया स्वर्गलोक में, चंद्रलोक में, या अपने कर्मों का भोग करने के लिए अन्य योनियों में, इसे भी माना जा सकता है। निम्नतर योनि, मनुष्येतर योनि, मनुष्य से भिन्न जो निम्नतर योनियां हैं वहां चला गया। जैसा हमने पिछली बार कहा था, हिरण का उदाहरण दिया था, राजा भरत हिरण बनते हैं और हिरण का शरीर समाप्त हुआ कि वे फिर से मनुष्य बनते हैं और जड़ भरत हो जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार मनुष्य ने अगर बहुत गर्हित कर्म किए हैं तो अपने पापों का फल भोगने के लिए निम्न योनि में चला गया और जैसे ही वह शरीर नष्ट हुआ फिर से मनुष्य योनि में आ गया। पर आएगा कैसे? वैसे आएगा, पर्जन्य से वृष्टि के द्वारा नीचे गिरता है, पतित होता है और किसी वनस्पति में चला जाता है। वनस्पति को पुरुष भक्षण करता है, उससे उसके अंदर में वह आ जाता है, उसके शुक्र में प्रविष्ट होता है, का संयोग होता है, शुक्रकण रजकण मिलते हैं और वहां से जीवन का प्रारंभ होता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि जिस समय एग फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर उसके बाद बहुत समय बाद या दो या तीन महीने के बाद जीव का जन्म होता है, तो इस सिद्धांत को वेदांत नहीं मानता। वह कहता तुरंत उसी समय वह जो चुनता है, उसने जो रजकण चुना है, वह जो शुक्रकण ने रजकण को चुना है या रजकण ने शुक्रकण को पसंद किया है लक्ष्य लक्ष्य में से, तो कहते हैं कोई चांस नहीं है या आकस्मिकता नहीं है। यह तो तुरंत मानो उसके भीतर में यह कर्म का सिद्धांत कार्य कर रहा है कि सब को छोड़ करके उस एक के साथ मिलित हो जाना और उसमें से इस जीव का फिर से प्रकट होना, जन्म लेना, यह सिद्धांत है। तो अपने कर्मों के बल पर, कर्मों के द्वारा यह मानो यह हम अपना जन्म मानो तैयार करते हैं, यह जीव अपने जन्म को तैयार करता है। तो यही तो जैसा हमने कहा कि यह शरीर मिलता है, प्रारब्ध के अनुरूप हमें अपना शरीर प्राप्त होता है, प्रारब्ध हम ही स्वयं निर्मित करते हैं और संचित जो है वह कारण शरीर के भीतर में जाकर के जमा हो जाता है। मानो उस संचित से धीरे धीरे हिस्सा अपने आप धीरे धीरे खत्म होता जाता है और ज्ञान की दशा में क्या होता है, क्रम कब समाप्त होता है,
यह चला, ऐसा ही क्रम चला कि मैं एक मनुष्य योनि में आता हूँ, फिर कर्म करता हूँ, मृत्यु के समय में फिर से मेरे सारे संस्कार आकर के खड़े हो गए, उनमें से प्रबलतम जो संस्कार हैं वे प्रारब्ध बन जाते हैं, वे मेरे सूक्ष्म मन को माने सूक्ष्म शरीर को रूप देते हैं अपने मानव संस्कारों के अनुरूप, और फिर उसे गर्भ में प्रविष्ट करा देते हैं। यह कैसे संभव होता है? संभव होता है जैसे हम छोटा सा वट वृक्ष का बीज देखते हैं। आपने देखा है वट वृक्ष कितना महान, कितना बड़ा होता है, विशाल वट वृक्ष, और यह वट वृक्ष किसमें से निकला? उसका बीज कितना छोटा होता है, राई के दाने के बराबर छोटा, और इस राई के दाने के बराबर वट वृक्ष के बीज में यह सारा का सारा वृक्ष भरा था। तो ठीक इसी प्रकार का वह सूक्ष्म संस्कार होता है हमारा, यह प्रारब्ध का, यह हमारे सारे संस्कारों का, ये मानो सूक्ष्म बीज के रूप में वहां पर विद्यमान रहते हैं। कोई मनुष्य कह सकता नहीं इतना बड़ा गुणी, ये कहां, ये सब गुण कहां भरा था? अरे जैसे विशाल वट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, एक अत्यंत छोटे से बीज में जब समाहित होकर के रह सकता है, तो ये क्या इसमें नहीं हो सकता? यह कर्म का सिद्धांत। तो वह बीज के रूप में प्रारब्ध जैसे हमारा अलग हुआ, बाकी जितने संस्कार हैं वे संचित हो गए, वे जो संचित संस्कार है उसको हम कारण शरीर कहते हैं, और जो प्रारब्ध है उसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये दोनों के दोनों निकलते हैं, और नया जन्म जब मिलता है तो फिर प्रारब्ध फिर क्रियमान होने लगता है। यह कब खत्म होता है यह क्रम जन्म जन्मांतर का? कहते जब ज्ञान होता है तब। ज्ञान से क्या होता है? मनुष्य जिस समय अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब क्या होता है? स्वरूप कब प्राप्त करता है? जब धीरे धीरे अपने उस सूक्ष्म शरीर को, या सूक्ष्म शरीर हाँ जिसे हमने मन कहा, मनोयंत्र, मनोयंत्र को मांज रहा है, चमका रहा है, उसके मल को धो रहा है, और आत्मा का चैतन्य, आत्मा की ज्योति प्रतिबिंबित हो रही है, और जब मन पूरी तरह साफ होता है तो आत्मा का चैतन्य इतनी तीव्रता से प्रतिबिंबित होता है कि मनोयंत्र को जला देता है। इतनी तीव्रता से प्रतिबिंबित होता है, उसमें इतनी शक्ति होती है कि हमारा मनोयंत्र जल जाता है, कारण शरीर जल जाता है, मनोयंत्र जल जाता है। अब ये जल तो गया, नष्ट हो गया, जल गया, इसका मतलब क्या है? वह ज्ञान की तीव्रता से सारा का सारा मनोयंत्र जल गया, और जल करके क्या कोई संस्कार अब उत्पन्न नहीं करता? नहीं करता, कैसे करेगा? मतलब जल गया है, जैसे डोरी है, डोर को हमने आग में जला दिया, रस्सी का आकार तो रस्सी के समान ही दिखाई देता है, परंतु उसे कोई बांधने का काम नहीं लिया जा सकता, वह तो जली हुई रस्सी है। हम कहते हैं देखो डोर उठा तो लाओ, उठाने गए तो देखते हैं डोर नहीं है, राख है, उसे बांधने का काम नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार जिसको ज्ञान हो जाता है उसका संचित कर्म जल ही गया, और उसका यह जो है जिसे कहेंगे कारण शरीर तो जल ही गया है, और यह भी जल गया है, जो प्रारब्ध पैदा करने वाला यह जो उसका मनोयंत्र है सारा का सारा जल गया है, आकार दिखाई दे रहा है, अब यह शरीर केवल बाकी है। तो अब यह जब तक शरीर बाकी है केवल प्रारब्ध का जितना अंश शेष होने को है वह अब नहीं जलता, अब अगले संस्कार पैदा नहीं होंगे। क्यों पैदा नहीं होंगे? अगले संस्कार पैदा होते थे कर्तापन के कारण। हम कर्म करते हैं ना, कर्म की पीछे भावना होती है, मैं कर्म कर रहा हूं, भावना के साथ हमारा अहम जुड़ा हुआ होता है, मैं किसी पर दया करता हूं, मैं सेवा करता हूं, मैं दुख देता हूं, तो दुख देने में, किसी की सेवा करने में, किसी को सुखी करने में या मैं जुड़ा हुआ है, मैं के कारण ये सारे संस्कार पैदा होते हैं। पर ज्ञान की अग्नि इस मैं को जला देती है, मनोयंत्र जल जाता है। अब इसके बाद जो हम कर्म करते हैं वह तो प्रभु कर्म कराते रहते हैं, उसके पीछे कोई अहंकार का भाव नहीं होता। और ज्ञानी पुरुष में अगर अहंकार कहीं पर दिखाई देता है, ज्ञानी पुरुष अगर कहता हो अजी तुमने कैसी चाय दे दी आज, तो इसमें चीनी बहुत कम पड़ गई है, तो हम उसके ज्ञान पर धब्बा उसे न माने, वह तो अब ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, अब वह तो बस इस जीवन को बिता रहा है, अब प्रारब्ध का क्षय कर रहा है। केवल जैसे पानी की, पानी का दाग, हमने आप पर पानी फेंक दिया, लगता है दाग तो लग गया पर कितनी देर के लिए? पानी का दाग, बंगला में कहावत है साधु राग पानी ज्वले दाग, साधु माने जो ज्ञानी व्यक्ति है उसका राग, राग माने गुस्सा, तो साधु राग को तो खून, एक जो ज्ञानी व्यक्ति है अगर उसको गुस्सा आता है तो कितनी देर, हमको जब गुस्सा आता है
तो गुस्सा मालूम नहीं ऐसा लगता है कि जब तक हम मरते नहीं तब तक बना रहता है। मृत्यु शैया पर पड़े हैं तब भी कहते हैं, अरे जरा बेटा उसको देख तो लेना, उसने मुझे बहुत दुख दिया है, देख जरा उससे बदला चुकाना है। अरे तू तो मर रहा है बाबा, पर अभी तक नहीं गया है क्रोध का संस्कार। और साधु राग यानी व्यक्ति है उसका राग उसका गुस्सा ज्वलेर दाग, जल हमने किसी पर डाल दिया कितने देर के लिए। हम लोग वहां पर कॉलेज में देखते थे, कॉलेज में कुछ लड़के थे, उन्होंने कुछ केमिकल से एक रंग बनाया था, और वहां पर नागपुर की बात है, निकलते थे रंग डाल दिया, कोई सूरज बूटे रंग डाल दिया कपड़े पर, साफ कपड़े जा रहा है पहन करके, खूब गुस्सा होता था, खूब गुस्सा होता था, मैंने रंग डाल दिया है तुम, ये नहीं है होली के समय रंग डाल दिया है। और उस रंग में जो केमिकल के रंग में एक विशेषता थी कि वह करीब 10-1 मिनट तो दिखाई देता था, फिर उसके बाद उड़ जाता था। एक बार की घटना का मुझे ख्याल है कि पुलिस के पास, चलो हम पुलिस के पास ले जाते हैं, ले गए, बिठाया, गाड़ी में जा रहे थे तो एकदम से रंग फेंक दिया, सब रंग गया बिल्कुल लाल लाल, एकदम गाड़ी रोक करके, बिल्कुल ऐसा 4-5 लोग थे, एकदम गाड़ी, चलो पुलिस थाने में चले। और जाकर कहा कि देखिए लोग रंग डाल देते हैं गाड़ी पर चलते हुए, तो कहां पर रंग डाला साहब, देखा रंग था खुल गया। हम लोग खूब जोरों से हंसे, कहा साहब जरूर वो रंग डाला था, उस समय जरूर रंग डाला था, वो रंग उड़ गया है, ऐसे ही केमिकल है जो आपके वस्त्र को दाग नहीं लगाएगा। तो ये जो है साधु या जो ज्ञानी है तो उसमें ये दाग नहीं लगते हैं, पर इसका इसका शोषण भी होता है। माने अब जितनी भी जीवन में जो सत्य है ना, असत्य कैसे चलता, सत्य के आधार पर ही तो असत्य चलता है। जो खोटा सिक्का चलता है बाजार में क्यों चलता है, खरा सिक्का है इसलिए खोटा चलता है, जो खोटा चलता है वो खरे को आधार बना के ही तो चलता है। तो यह जो अब ज्ञानी का है कि यह जो ज्ञानी है देखो यह कर्म, ये तो ठीक है चीनी मांगता है, कहता है कि तो आज तो तुम्हारी चाय फीकी है, तो ऐसे ही बस कुछ लोग कहते हैं कहीं ये हो गए। अरे हमारे जो है ना महात्मा जी, अरे भाई बड़े पहुंचे, क्या पहुंचे हुए जी तुम तो, ये तो बड़ा दुराचारी आदमी है, ये तो व्यभिचारी है दुष्कर्म का, अरे नहीं नहीं उनके मन में कोई दाग नहीं है। ये उसका शोषण है, मन में कोई दाग नहीं है। श्री रामकृष्ण के जमाने में कोई साधु आया था पंचवटी में, खूब उसने प्रचारित कर रखा का अद्वैत वेदांती है, संसार को मिथ्या माया कहता है। फिर इसके बाद सुना गया कि वह जरा व्यभिचारी निकला, वह उसका चरित्र पतित था। अब श्री रामकृष्ण तो मुफट थे, एक दिन मिलने के लिए आया, कहा कैसे वेदांती हो जी, इधर यह भी सब दुष्कर्म करते हो और इधर वेदांत की बात करते हो। कहा महाराज मैं भी आपको समझा देता हूं, जब वेदांत कहता है यह संसार त्रिकाल में मिथ्या है तो मैंने यह जो कर्म किया वही सत्य होगा महाराज, यह भी मिथ्या है। श्री रामकृष्ण ने जो कहा वो बता देता हूं, थोड़ी क्षमा मांगते हुए, क्योंकि श्री रामकृष्ण के शब्द जो होते थे तो कितनी उनमें कहा कि साले तेरे इस वेदांत ज्ञान में मैं मूटता हूं, ये श्री रामकृष्ण के शब्द थे कि तेरे इस वेदांत ज्ञान में मैं मूटता हूं, ये वेदांत ज्ञान मुझे नहीं चाहिए, जो वेदांत कहता हो संसार त्रिकाल में मिथ्या है इसलिए मैं कुछ भी कर्म करूं वह भी मिथ्या है, दुष्कर्म करूं तो भी मिथ्या है, किसी को मार डालो तो भी मिथ्या है, जब सब कुछ मिथ्या है तो मिथ्या है। यह ज्ञान का शोषण है, शोषण किया है हमने, कर रहे हैं, हो रहा है। तो यहां पर जो है तो यथार्थ जो स्थिति है वह स्थिति प्राप्त होती है, बस प्रारब्ध पद केवल बाकी है, संचित जल गया है, क्रियमान हो रहा है पर क्रियमान का कोई फल नहीं उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि क्रियमान का संस्कार तभी होगा जब उसके पीछे अहम होगा, अहम होने से कर्मों के संस्कार होते हैं, और जहां पर अहम ही नहीं है वही जल गया है, वहां पर कर्मों के कोई संस्कार पैदा नहीं होते। तो प्रारब्ध केवल बाकी है, अब कब तक प्रारब्ध बाकी रहेगा उसका क्षय कर देंगे, प्रारब्ध का बाकी कब तक है। जैसे उदाहरण देते हैं कि भाई देखो ये शरीर तो चलेगा ही, मैं एक चक्के को घुमा रहा हूं और घुमाते घुमाते अभी अचानक मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने अब इस चक्के को घुमाना तो छोड़ दिया है, पर चक्का तो घूमता रहेगा, कब तक घूमता रहेगा, उसको जो गति मिली है तो जब तक उस गति का समापन नहीं हो जाता तब तक वह चक्का घूमता रहेगा, और जब वह गति जो मैंने दी थी वह समाप्त होगी तो चक्का समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब यह जीवन मेरा शुरू हुआ तो प्रारब्ध के कारण शुरू हुआ था, प्रारब्ध के कारण उसे गति मिल रही थी और ज्ञान हुआ माने चक्के का घुमाना बंद कर दिया गया, बंद हो गया, पर अपनी गति से वह चक्का तो प्रारब्ध के कारण घूमता ही रहेगा। वह जो घूमता रहेगा तो वह तब तक घूमता रहेगा जब तक प्रारब्ध है। बस इसको कहते हैं जीवन मुक्त की अवस्था, कि ज्ञान हो गया, मैं ज्ञान में स्थित हो गया हूं और अभी जीवित तो हूं, यह जो बाकी का समय है जीवन मुक्त की अवस्था है। और जब मेरा शरीर पात होता है तो वह विदेह मुक्ति की अवस्था है, शरीर से मैं अलग हो गया, आने जाने का चक्कर छूट गया, क्योंकि मेरे सारे संचित संस्कार जल गए, जो क्रियमाण थे वे सारे के सारे के जल गए, ये सब खत्म हो गए। प्रारब्ध था उसका क्षय हो गया भोग के कारण, अब कोई कर्म बाकी ही नहीं है, न प्रारब्ध बाकी है, न संचित बाकी है, न क्रियमाण बाकी है, अब किसी प्रकार का संस्कार उत्पन्न ही नहीं होता, वह ज्ञान की अवस्था है। उसी को कहते हैं कि अब जीव ने वृत्त को पूरा कर लिया, अब वह ज्ञानी हो गया। यह पुनर्जन्म का सिद्धांत जो भागवत में यहां पर आया है, जिसको आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। तो अब यह जो है यहां पर, अब इसके कई भेद हो सकते हैं, तीन भेदों की चर्चा प्रसंग में करेंगे, पर मेन मुद्दे जो हैं, मुख्य मुद्दे, पुनर्जन्म का सिद्धांत, कर्म के साथ कैसे यह जुड़ा हुआ है, यह सब आपके समक्ष रखने की चेष्टा की गई है। तो आइए इसका समापन कर लें। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंध के अंतर्गत 29वें अध्याय पर चर्चा कर रहे थे, जहां पर नारद जी राजा प्राचीन बरही को जीव और ईश्वर के स्वरूप में वर्णन करते हुए समझाते हैं। इस संदर्भ को लेकर के हमने पिछली बार तीन चर्चाएं की थी पुनर्जन्म को समझने के लिए। देवर्षि नारद ने प्राचीन बरही को संकेत देते हुए कहा था कि राजन, आपने यज्ञों में जिन सब पशुओं की बलि दी है वे सब क्रुद्ध होकर के बदला लेने के लिए तैयार हैं, और ज्यों ही आप यह शरीर छोड़ करके जाएंगे त्यों ही वे आकर के अपने नुकीले सींगों से आप पर आघात करेंगे। यह प्रसंग था और उसी प्रसंग को लेकर के हमने पुनर्जन्म के संबंध में विचार किया। हमने यह कहा था कि पुनर्जन्म और कर्मवाद ये दोनों अभिन्न रूप से एक दूसरे के साथ संयुक्त हैं। पुनर्जन्मवाद कर्म पर ही खड़ा होता है। हमने यह कहा कि मनुष्य का यह जो जीवन है वह यह जो एक जीवन मनुष्य को प्राप्त है केवल उसी के बल पर हम मानव जीवन की समुचित व्याख्या नहीं कर सकते। जैसा कि बाहर के अन्य धर्म माना करते हैं कि यह जो एक जीवन मिला यही बस मनुष्य के लिए एकमात्र जीवन है, तो उससे मनुष्य के भेदों का समुचित हमारे समक्ष उत्तर और स्पष्टीकरण नहीं हो पाता कि मनुष्य मनुष्य में भेद क्यों है। यदि वह ईश्वर जिसने संसार का सृजन किया है, यदि ऐसा सृष्टिकर्ता ईश्वर सभी जीवों के प्रति करुणा से भरा है, यदि उसके हृदय में सभी के लिए अपार पुत्रवत स्नेह हैं, तो वह एक व्यक्ति को निर्धन और दूसरे को धनी क्यों बनाता है? एक को बचपन से ही रुग्ण बना देता है और दूसरे को आजीवन स्वास्थ्य का उपभोग करने की क्षमता प्रदान करता है। तो यदि ईश्वर न्यायी है तो इस प्रकार का भेद ऐसे न्यायी ईश्वर के राज्य में क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर न तो ईसाई धर्म के पास है और न इस्लाम धर्म के पास। ये जो धर्म केवल मनुष्य के एक ही जन्म को सब कुछ मानते हैं, इसीलिए हमने कहा कि भारत में इस प्रश्न पर बड़ा गहन चिंतन किया गया कि क्या मनुष्य की गाथा एक जीवन में ही समाप्त हो जाती है। उन्होंने इस पर परीक्षण किए और अंत में वह सिद्धांत निकला जिसको हम पुनर्जन्म के सिद्धांत के रूप से जानते हैं। इस पर विस्तार से हमने चर्चा की है, तीन प्रवचनों में भेद दिखाया है, विज्ञान के विकासवाद का वेदांत के साथ, विज्ञान किस प्रकार विकासवाद को मान्यता देता है, और हमने यह भी कहा कि वेदांत के क्षेत्र में भी हमने विकासवाद को स्वीकार किया है, पर यह जो वेदांत का विकासवाद है उसमें अपनी विशिष्टता है और उस विशिष्टता को आपके समक्ष रखने की चेष्टा की गई है। तो विशिष्टता को अत्यंत थोड़े से शब्दों में हम फिर से आपके समक्ष रख दें, जिससे आप आज की चर्चा को समझने के अनुकूल मनस्थिति बना सकें। हमने कहा था कि यह जो जीव शास्त्र का विकासवाद है, बायोलॉजी के क्षेत्र का, वह ऐसा मानता है कि अमीबा से जीवन का प्रारंभ होता है और वह कई स्पीसीज में से, योनियों में से बहता हुआ चलता है और अंत में मनुष्य योनि तक आता है विकासवाद की प्रक्रिया में। और हमने यह कहा था कि यदि हम जीवशास्त्री से पूछें कि आप कितनी स्पीसीज स्वीकार करते हैं, कितनी योनियों में विकास का प्रवाह बहकर के मनुष्य योनि तक आता है, तो उनका उत्तर भी आपके समक्ष रखा था, वे 128 लाख योनियां स्वीकार करते हैं। हमने अपने यहां 84 लाख योनियों की बात कही। यह जीव 84 लाख योनियों में से घूम करके फिर मनुष्य योनि प्राप्त करता है। तो हमने यह कहा था कि यह जो 84 लाख योनि की बात है, इसमें किसी प्रकार की अवैज्ञानिकता नहीं है। इसका तात्पर्य कि भारत में भी परीक्षण हुआ, भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग किए गए, जीवन की प्रणाली को समझने की चेष्टा की गई और उसके बाद यहां पर के वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और फिर हमने भिन्न भिन्न प्रकार से वेदांत की दृष्टि से विकासवाद को आपके समक्ष रखा था, वह इस प्रकार कि विज्ञान के क्षेत्र में जैसा कि हमने कहा था जीवन के लक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जाता, कि मनुष्य जीवन का ऐसा कोई लक्ष्य हो सकता है, इस संबंध में विज्ञान के क्षेत्र में कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं है, कोई स्पष्ट कल्पना नहीं रही है। पर यहां पर वेदांत ने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट ही कर दिया और यह कहा था कि मनुष्य वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप है, यह जो जीव है वह ईश्वर का ही अंश है भक्ति की भाषा में, या जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल ऑफ लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। यह जो मनुष्य है, यह जो जीवात्मा है, वह वस्तुतः दैवी है, दिव्यता ही उसका असल स्वरूप है। उसका यह जो दिव्य भाव है, उसकी यह जो ब्रह्म स्वरूपता है, वह छिपी हुई है, स्थिति से ब्रह्म भाव को प्रकट कर देना, यह मानव जीवन का लक्ष्य है। इसका मतलब यह हुआ कि हम में से प्रत्येक उसी दिव्य भाव से पूर्ण है, परंतु अज्ञान का आवरण उस पर चढ़ा है, इसलिए वह दिव्यता प्रकट नहीं होती दिखाई देती। इसीलिए हमारा ब्रह्म भाव प्रच्छन्न रहता है, छिपा हुआ रहता है, हम अपने को अपूर्ण मानते हैं, जबकि हमारे भीतर अनंत संभावनाएं निहित हैं। इन्हीं अनंत संभावनाओं को व्यक्त करना मानव जीवन के लक्ष्य के रूप में निरूपित हुआ है। अपने स्वरूप को जानने के फलस्वरूप यदि मैं अपने स्वरूप को जान सका, यदि मैं अपने ब्रह्मत्व को पहचान सका, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने पूर्णता हासिल कर ली। और वह जो अमीबा से, जीवाणु कोश से जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई थी, वह यात्रा फिर सम्यक रूप से पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार वेदांत हमारे समक्ष जीवन के लक्ष्य को रखता है। इसीलिए तुलनात्मक दृष्टि से इन दोनों का हमने विस्तार से विवेचन किया था कि कैसे यह विज्ञान जीवन के लक्ष्य को पहले स्वीकार नहीं करता था, पर आज कुछ ऐसे जीवशास्त्री हैं जो इस मनुष्य जीवन को निरुद्देश्य नहीं मानते। वे कहते हैं कि इसका एक लक्ष्य है, यह जो इवोल्यूशन का प्रोसेस चला हुआ है, विकास का क्रम चला हुआ है, इस विकास के क्रम की कहीं पर जाकर के पूर्णता साधित होती है, और उसे उन्होंने फुलफिलमेंट का नाम दिया। द इवोल्यूशनरी प्रोसेस टेंड्स टू फुलफिलमेंट एंड ग्रेटर फुलफिलमेंट। यह जो विकास की प्रक्रिया है वह पूर्णत्व की ओर और अधिक पूर्णत्व की ओर जा रही है, यह विज्ञानवादियों का कथन है। अब इस पूर्णत्व से क्या समझेंगे, इसके संबंध में भी हमने चर्चा की। एक विज्ञानवादी किस अर्थ में इस फुलफिलमेंट की बात करता है, यह भी आपके समक्ष कहा था। वेदांत की दृष्टि से इसकी भी व्याख्या की थी, और यह कहा था कि जब तक हम वेदांत पर आधारित दृष्टिकोण के द्वारा इन बातों को समझने की चेष्टा नहीं करेंगे, तब तक ये बातें कुछ समझ में आ नहीं पाती। इसलिए पुनर्जन्म को सिद्धांत की दृष्टि से स्वीकार किया, तर्क की दृष्टि से स्वीकार किया, और फिर इसके बाद यह भी कहा था कि अनुमान की दृष्टि से भी हम इस पुनर्जन्मवाद को स्वीकार करते हैं। ज्ञान के तीन तरीके माने गए हैं, और तरीकों को प्रमाण कहते हैं। प्रमा का मतलब होता है ज्ञान, और प्रमाण का तात्पर्य होता है ज्ञान का उपाय। तो प्रमाण का मतलब हुआ ज्ञान का उपाय या ज्ञान का तरीका। तो तीन तरीके भारतीय तर्कशास्त्र ने स्वीकार किए हैं। एक तरीका है प्रत्यक्ष प्रमाण का, एक को कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरे को कहते हैं अनुमान प्रमाण, और तीसरे को शास्त्र प्रमाण। ये तीन प्रकार के प्रमाण स्वीकार किए गए। प्रत्यक्ष प्रमाण में हम अपनी आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, अपनी इंद्रियों के माध्यम से हम अनुभव करते हैं। और अनुमान प्रमाण का मतलब कि हमने पहले कभी प्रत्यक्ष रूप से उसे देखा था, और आज अनुमान के सहारे उसकी कल्पना फिर से करते हैं, इसे अनुमान प्रमाण कहा गया। और शास्त्र प्रमाण जो शास्त्रों ने कहा है, इसको आप्त प्रमाण भी कहा कि आप्त पुरुषों ने, जिन्हें भगवान का साक्षात्कार हो गया है, ऐसे व्यक्तियों ने जो कुछ कहा है उसको हम प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। इनको आप्त वचन कहते हैं या शास्त्र प्रमाण के रूप से भी कहते हैं। इसको यूं समझ लें कि प्रत्यक्ष प्रमाण तो हमारी इंद्रियों पर आधारित हैं। जैसे मैंने एक व्यक्ति को देखा, और मैं अपने मित्र से उस व्यक्ति की चर्चा करता हूं, और कहता हूं कि देखो आज उस व्यक्ति को मैंने देखा, आज वह आया था। मित्र यदि मुझसे कहे कि मैंने तो उस व्यक्ति को नहीं देखा, मुझे लगता है कि वह नहीं आया था, तब मैं जोर देकर के कहता हूं कि नहीं, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, वह तो आया था। मानो यह मेरे लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं दूसरे किसी प्रमाण पर अपने तर्क को आधारित नहीं करता। मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है।